मुकद्दर का सिकंदर। 1978 में रिलीज हुई ये फिल्म अमिताभ बच्चन के जीवन की कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का निर्देशन किया है प्रकाश मेहरा ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म में एक सीन था जहां अमिताभ बच्चन ने विनोद खन्ना पर एक ग्लास उठाकर फेंका था। क्या आपको पता है वो ग्लास सचमुच जाकर विनोद खन्ना के चेहरे पर लगा था और इसी वजह से उनके चेहरे पर 6 टाके भी पड़े थे।
शिमला के स्टेशन पर रामनाथ जी अपनी बेटी कामना के साथ ट्रेन से उतरते हैं और अपने नौकर का इंतजार करते हैं, पर कूली ढूंढते हैं क्योंकि उनका नौकर नहीं आता। तभी एक लड़का वहां आता है और उनका सामान उठाने की जिद करता है। घर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उनका नौकर बीमार है, तो वो लड़का उस घर में काम मांगता है। कामना के कहने पर रामनाथ जी उसे नौकरी पे रख लेते हैं।
एक दिन वो लड़का घर साफ कर रहा था, तभी उसके हाथ से कामना की गुड़िया टूट जाती है। वो कामना से कहता है कि ये बात वो बड़े साहब से न बताए और वो वैसी ही एक गुड़िया उनको ला करके देगा।
क्या हुआ? अरे, तूने मेरी गुड़िया तोड़ दी।
मेम साहब, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी, मेरा हाथ लग गया। मेम साहब, अब मत रोइए, मैं आपको बिल्कुल ऐसी गुड़िया ला दूंगा।
तू कहाँ से ला देगा, ये तो मेरी माँ की निशानी है।
मैं आपको ला दूंगा मेम साहब, मगर आप साहब से ना बोलिएगा वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये घर मिला, ये घर ना मुझसे छिन जाए मेम साहब। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपके पांव पड़ता हूँ मेम साहब, आप साहब से ना बोलिएगा।
अच्छा, नहीं बोलूंगी, तुम मुझे ऐसी गुड़िया ला देगा ना?
हाँ मेम साहब, मैं जरूर ला दूंगा।
उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब उस लड़के को रात को ठंड लग रही होती है तो कामना उसे अपना शॉल उड़ा देती है और अपने साथ बैठा कर खाना भी खिलाती है और अपनी माँ के पसंद का एक धुन उसे सुनाती है।
वो दोनों एक दिन घूमकर वापस आ रहे हैं तो रामनाथ जी इनकी दोस्ती का कुछ और ही मतलब ले लेते हैं और इस लड़के को घर से निकाल देते हैं। जैसे ही अगले दिन ये लड़का अपनी शॉल वापस करने के लिए उनके यहाँ आता है तो पता चलता है कि वो बॉम्बे चले गए हैं।
कामना से मिलने के लिए वो भी बॉम्बे चला आता है। मुंबई की एक दुकान में वो बिल्कुल वैसी ही एक गुड़िया देखता है जो उससे टूट गई थी। गुड़िया को खरीदने के लिए वो काफी मेहनत करता है। एक दिन वो कामना को अपने पिता के साथ देखता है और खुद को रोक नहीं पाता, उनकी ओर दौड़ता है, मगर गाड़ी के सामने आ जाता है। एक औरत जिनका नाम फातिमा है वो उसे गाड़ी के नीचे आने से बचा लेती है।
ये दोनों बात कर ही रहे थे कि दो चोर फातिमा का बटुआ लेकर भाग जाते हैं और ये लड़का उनसे लड़ झगड़ कर उनका बटुआ वापस ले आता है।
ये तो मेम साहब है, मेम साहब, सेठी, मेम साहब, सेठी, मेम साहब।
क्यों रे, देख के क्यों नहीं चलता? खुदकशी करना चाहता है क्या?
सेठ जी, मैम साहब।
मैम साहब, सेठ जी कौन है ये लोग?
वो जो गाड़ी में चले गए।
वो कौन?
मैं उनके यहाँ काम करता था।
फिर वो तेरी आवाज क्यों सुनने लगे?
क्यों?
दुनिया में आवाज देने का हक सिर्फ अमीरों को है। हम जैसे गरीबों की आवाज पे दौलत वाले नहीं रुकते।
अरे आपका छाप आगे, चोर चोर। ये लीजिए माजी, आपका थैला।
अरे, तुमने मेरे मामूली से सामान के लिए अपनी ये हालत बना ली हूँ?
तो क्या हुआ माजी, आपने भी तो मेरी जान बचाई है, मैंने आपका सामान बचा दिया।
तू तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है रे, क्या नाम है तुम्हारा?
मेरे बहुत से नाम है माजी, कोई मुझे सुअर कहता है, कोई मुझे मवाली कहता है और कोई मुझे हरामी कहता है।
जी जी जी, कैसी बातें करता है तू?
कसम से माजी, लोगों ने मुझे इतने नामों से पुकारा है कि मुझे अपना असली नाम भी याद नहीं।
तेरे माता पिता कहाँ हैं?
मेरा कोई भी नहीं है।
बहन भाई?
कोई भी नहीं।
फिर तुम रहते कहाँ हो?
हम जैसों को अपने पास रखता कौन है, सड़क पे रह लेते हैं। और आज एक सेठ कह रहा था कि हम लोग गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो सड़क पर ही पैदा होते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। मैं भी यहीं मर जाऊंगा।
नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटे। आज से मैं तेरी माँ हूँ।
माँ?
हाँ बेटे, मैं तेरी माँ हूँ।
नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो, नहीं तो मैं रो दूंगा। माँ, तुम मुझे गाली दो, मुझे मारो, मगर ऐसा मत बोलो मेरी कोई भी माँ नहीं है, मेरी कोई भी माँ नहीं है।
नहीं नहीं बेटे, आज से मैं तेरी माँ हूँ। तेरे ही जैसा मेरा भी एक बेटा था, वो भी किसी पैसे वालों की गाड़ी के नीचे आके इस दुनिया से चल बसा। तकदीरों से मुझसे छीन लिया, लेकिन लेकिन आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। तेरा कोई नाम नहीं है ना, मैं तुझे अपने बेटे का नाम दूंगी। आज से तेरा नाम है सिकंदर।
सिकंदर?
हाँ।
क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ?
लगता है ये दर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा।
घबरा मत माँ, तू अपने सिकंदर के कंधे पे हाथ रख, सब ठीक हो जाएगा। चल माँ।
फातिमा की एक छोटी बेटी है मेहरू। एक दिन फातिमा सिकंदर को अपने साहब के घर लेकर जाती है तो पता चलता है कि ये तो वही साहब रामनाथ जी हैं जिनके यहाँ शिमला में वो काम करता था। कामना उसे देखकर काफी खुश होती है और शाम को अपने जन्मदिन पर बुलाती है।
साहब उसे देखते ही गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत घर से निकाल देते हैं। सिकंदर कामना को वो गुड़िया तोहफे में खरीद कर देने की लाख कोशिश करता है पर हर बार उसे दुकान से भगा दिया जाता है। कोई रास्ता ना पाकर सिकंदर उस दुकान से वो गुड़िया चुरा लेता है। अपने जन्मदिन पे कामना अपनी माँ का ये गाया गीत गाती है।
कामना को तोहफा देने के लिए उसे ढूंढते ढूंढते सिकंदर कामना के कमरे में पीछे पाइप से चढ़कर घुस जाता है और कामना की एक कीमती चेन को हाथ में लेकर उससे बातें करने लगता है। पर तभी कामना के पापा आ जाते हैं और उसे चोर समझकर बहुत मारते हैं।
चोर? बदमाश कमीने?
मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी रहेगी।
चोर को मैं जान से मार डालूंगा।
नहीं सेठ जी, ये चोर नहीं है।
चोर नहीं तो और क्या है? मेरे मना करने के बावजूद चोरों के रास्ते से मेरे घर में घुस के क्या कर रहा था?
क्यों नहीं, चौक पर क्यों गया था?
मैं तो मैम साहब को तोहफा देने आया था।
तोहफा? तू? तोहफों में सबसे कीमती चीज है हार, जो मैं अपने बेटी के लिए लाया था, चुरा के ले जा रहा था। देख लिया तूने, जिस सांप के बच्चे पर तुम रहम कर रही थी वही तुम्हारे घर में डाका डाल रहा था। इसीलिए मैं कह रहा था दूर रहो इसे। आज मैं बताता हूँ मुझे ऐसे लड़कों से क्यों नफरत है। ऐसे ही एक आवारा लड़के पर तुम्हारी माँ को रहम आ गया था, वो उसे घर ले आए और उसे उतना ही प्यार दिया जितना एक माँ अपने बेटे को देती है, और उस बेटे ने तुम्हारी माँ के सारे गहने चुरा लिए और उसके पेट में छुरा भोंक दिया। आज भी वो रात जब मुझे याद आती है।
निकल जाओ, तुम चोर हो, तुम खूनी हो, मेरे घर में कभी बताना।
नहीं मैम साहब, मैंने चोरी नहीं की, आप भी मुझे चोर समझती
हैं। निकल जाओ।
सिकंदर को बेइज्जत होते देख फातिमा उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसके पेट में दर्द होता है और कुछ ही देर में वो खुदा को प्यारी हो जाती है।
दोनों बच्चे अपनी माँ के कब्र पर रो रहे थे तभी एक फकीर आकर सिकंदर को समझाता है कि हमेशा हंसते रहना चाहिए क्योंकि खुशी तो चंद पलों की मेहमान होती है पर दुख जिंदगी भर हमारा साथ निभाती है। सिकंदर बड़ा हो जाता है और अपने बाइक पर सवार होकर मजे से यही गाना गाता है।
बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो, सुख में हंसते हो तो दुख में कहकहे लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा, हंस और हंस और हंस। पैसा ही लगा।
रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ।
सिकंदर अपने नाम पे मार्केट बना चुका है। उसके मार्केट में पुलिस उसी के सामान को उठा ले जा रही थी। वो आकर पुलिस को बताता है कि वो सामान दरअसल उसका नहीं, बल्कि जिन्होंने कम्प्लेन लिखवाई थी, पॉल और उसके साथी का है। और ये भी बताता है कि वो किस तरह गरीब से इतना अमीर बन गया।
सिकंदर इतने पैसे कमा लेता है कि वो उसी सेठ रामनाथ जी के घर के सामने एक शानदार मकान बनवाता है। वो खुद तो अनपढ़ रह गया, पर बहन मेहरू को उसने काफी पढ़ाया लिखाया। वो मेहरू का रिश्ता इकबाल मियां से करवाता है।
मेहरू सिकंदर को बताती है कि कामना किसी स्कूल में टीचर है। सिकंदर अगले ही दिन कामना से मिलने चला जाता है। कामना को लगता है कि सिकंदर उससे बचपन के अपमान का हिसाब चुकाने आया है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है।
वहाँ आधमकते हैं प्यारे लाल जी और वो सिकंदर को लेकर के जोहरा बेगम के पास पहुँचते हैं और वो एक खूबसूरत सा नगमा सुनाती है।
लाहौल बिलाखोबर, लो फिर खंभा पकड़ लिया। इश्क ने तुमको निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तुम भी थे काम के।
आवारे लाल जी,
कितनी बार कहा आवारे लाल नहीं, प्यारे लाल आवारा।
हाँ हाँ प्यारे लाल जी, आज मुझे अकेला छुट्टी है।
मियाँ ऐसे मौके के लिए ही तो मुझे ऊपर वाले ने नीचे भेजा है और कहा है मियाँ सिकंदर जब भी उदास हो या अकेला रहना चाहे फौरन पहुँच जाओ। आओ चलो मेरे साथ।
कहाँ?
तुम्हें डुबाने ले जा रहा हूँ।
डुबाने?
हाँ, संगीत के समंदर में, आवाज के तूफान।
इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात कालम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, न हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है।
क्या बात, वाह वाह।
सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए।
हो जाती है और प्यारे लाल जी से कहती है कि वो दोबारा तब तक नहीं नाचेगी जब तक सिकंदर दोबारा उसके पास नहीं आएगा।
प्यारे लाल जी सिकंदर से कहते हैं कि अभी तो आपने बस एक ही जन्नत देखी है, अभी दूसरी देखनी बाकी है। और वो वहाँ से सिकंदर को अपने साथ एक बार में लेकर आते हैं। बार में उनकी मुलाकात विशाल से होती है जो पेशे से एक वकील है पर बार में पार्ट टाइम काम कर रहा है।
वहाँ उस बार में पॉल और उसका साथी भी होते हैं। उनके पास एक पैसों से भरा बक्सा होता है। वो विशाल से कहते हैं कि ये बक्सा सिकंदर का है।
अभी ये कैसा आइडिया पॉल, नोटों से भरा बैग सिकंदर को भिजवा दिया।
तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है?
अबे उस बैग में तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर नोट थे और नोटों के नीचे एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है।
भाई प्यारे लाल जी, आज तो दो कमाल दिखा दिए तुमने। पहला कमाल तो कमाल का था
और दूसरा
कमाल भी कमाल का था। चलो
मियां, ये गाड़ी में जाना जरूरी है?
क्यों
भाई, तुम्हें तो अपनी जान प्यारी नहीं, पर हमें अभी बहुत साल जीना।
सारा नशा उतार दिया प्यारे। जब सिकंदर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाता है। चल बैठ जा।
सिकंदर
कौन है भाई?
ये तुम अपना बैग अंदर भूला है।
बैग? हम प्यारे लाल जी, तुम तो हमारे साथ सुबह से हो, कुछ खबर है हमारे पास कोई बैग था या नहीं?
लो मियां, हमें अपनी खबर नहीं कि हम कहाँ हैं।
देखिए मजाक छोड़िए, इसमें बहुत सारे रुपए हैं।
अब इतने सारे रुपए तो सिर्फ सिकंदर के हो सकते हैं। लाओ भाई
कमाल,
ये आज का तीसरा कमाल था।
सही फरमाया आपने,
शुक्रिया।
जैसे ही विशाल वापस आता है तो उसे पता लगता है कि उस बैग में बॉम्ब रखा हुआ है। वो तुरंत सिकंदर की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है और खुद जख्मी हो जाता है। सिकंदर पॉल का पीछा करता है। पॉल जोहरा के कोठे पर जाकर छिप जाता है और सिकंदर से बचने की कोशिश करता है। सिकंदर जोहरा के कोठे पर पहुंचता है और वो पॉल के बारे में पूछता है। जोहरा जानती है सिकंदर बहुत गुस्से में है और कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे मनाने के लिए वो ये गाना गाती है।
बैठे हैं दिलावर, जो 7 साल की सजा पहले ही काट चुका है। दरअसल ये जोरा बेगम का आशिक है। उसकी यहाँ जेल में मुलाकात होती है पॉल से, जो उसे बताता है कि जोरा और सिकंदर की दोस्ती प्यार में तब्दील हो रही है।
ये बात सुनते ही खूंखार दिलावर जेल की सलाखों को तोड़कर भाग जाता है और सिकंदर को ढूंढता हुआ जोरा के पास पहुँचता है। सिकंदर को वहाँ देख कर वो बहुत नाराज हो जाता है और दोनों में बहुत जोरदार लड़ाई होती है।
क्या हो? मेरे को इधर देख के तेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी क्या? तूने सोचा होगा दिलावर को लग गई होंगी 2-5 साल की, दिल खोल के मोहब्बत कर डालो, कौन रोकेगा अपने को। लेकिन अपने तेरे से मोहब्बत किया क्या? और अपनी मोहब्बत के लिए ये जेल की दीवार तो क्या, अपन मौत की दीवार तोड़कर भी तेरे पास वापस आएगा। तूने हमेशा अपन से नफरत किया लेकिन हम बर्दाश्त किया, क्या बहुत बर्दाश्त किया इसको। लेकिन अगर तू किसी दूसरे से मोहब्बत करेगा, अपन अखा दुनिया को अंगार लगा देगा क्या?
वाह पहलवान जी वाह। अरे इश्क हमने भी किया है लेकिन आपके इश्क करने का ढंग ही कुछ निराला।
ए, तेरा नाम क्या बे?
अरे ले, बड़ी मुश्किल से तो एक नाम मिला, वो भी किसी अरे गहरे को बता देंगे।
जिंदा तो नहीं छोड़ेगा तेरे, तू हट सामने से हट। तेरा नाम सिकंदर है क्या? बोल।
अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं हीरा चट के जान दे दूंगी।
तू इस पत्थर के लिए हीरा चाट रही है? अरे इसके लिए तो कोई मिट्टी भी ना चाटे।
बोल, तेरा नाम सिकंदर है?
कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है पर दिलावर भाग जाता है। उसे जेडी अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और समझाता है कि उन दोनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए इन्हें जोश में नहीं बल्कि होश में काम करना होगा। विशाल ठीक हो जाता है और सिकंदर से उसकी दोस्ती हो जाती है और एक अजीब सा इत्तेफाक होता है, वो ये कि सिकंदर विशाल को उसकी माँ से मिलवाता है।
सिकंदर देखता है कि कामना अपने पिता के इलाज के लिए अपनी चेन बेच देती है। सिकंदर तभी उस चेन को खरीद लेता है और चेन की कीमत से ज्यादा पैसे देता है।
वो हॉस्पिटल में रामनाथ जी की दवाइयों का खर्चा उठाता है पर वो डॉक्टर से कहता है कि रामनाथ जी को इसके बारे में वो बिल्कुल ना बताए, पर किसी तरह से रामनाथ जी इस बात को सुन लेते हैं।
रामनाथ जी को उनकी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो सिकंदर से मिलने जाते हैं। सिकंदर उन्हें समझाता है कि वो आज जो कुछ भी है बस उन्हीं की वजह से है। बातों ही बातों में सिकंदर रामलाल जी से कहता है कि वो विशाल को असिस्टेंट बनाकर अपने पास रख ले, क्योंकि विशाल कुछ बनना चाहता है। विशाल कामना को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। कामना विशाल को एक केस के बारे में बताती है। ये केस दरअसल रामनाथ जी के फैमिली डॉक्टर के बेटे राम का है, जो जेडी की बेटी सीता से बहुत प्यार करता है। राम और सीता शादी करना चाहते हैं, पर जेडी सीता को उसके घर से निकलने भी नहीं देता। इसीलिए विशाल प्यारे लाल जी के साथ मिलके उस लड़की को कोर्ट तक लाने की तरकीब ढूंढते हैं और सीता को कोर्ट में पेश करते हैं और ये केस जीत जाते हैं।
विशाल की जीत की खुशी घर में मनाई जाती है। विशाल को कामना अपनी चैरिटी शो का टिकट बेचने का काम देती है, पर सिकंदर वो सारे टिकट्स खुद ही खरीद लेता है। सिकंदर को विशाल स्टेज पर बुलाता है और कामना सबके सामने सिकंदर को एक गाना गाने के लिए कहती है। सिकंदर वही गाना गाता है जो कामना बचपन में गाया करती थी।
ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
कामना और विशाल नजदीक आ रहे हैं और वहाँ सिकंदर खुद को हर पल नशे में डुबो रहा है।
मौका पाकर विशाल सिकंदर से उसकी शराब की लत को छोड़ने के बारे में कहता है।
सिकंदर की फोटो अखबार में छपती है तो रामनाथ जी बहुत खुश होते हैं। कामना को बताते हैं कि इतने दिनों तक उनके इलाज का खर्चा सिकंदर ने ही उठाया था। कामना सिकंदर को वो पैसे लौटाने जाती है। सिकंदर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी देखकर मेहरू समझ जाती है कि यही वो मेम साहब है जिसके सिकंदर दिन रात सपने देखता है।
विशाल सिकंदर के लिए एक खत लिखकर उसे उसकी मोहब्बत को पटाने को कहता है। सिकंदर वो खत कामना के पास भिजवाता है, पर कामना को लगता है कि ये खत सिकंदर ने नहीं विशाल ने भेजा है और वो खुशी के मारे ये खूबसूरत सा गाना गाती है।
दिल तो है
सिकंदर को लगता है कि कामना ये गाना उसके लिए गा रही है।
सिकंदर जोरा के पास जाकर उसे बताता है कि उसे उसका प्यार मिल गया है। वहाँ विशाल भी जोरा को ये बताता है कि सिकंदर से मिलना उसे बंद करना होगा, क्योंकि वो अगर जोरा के पास आता रहा तो उसकी बहन का घर कभी नहीं बस पाएगा।
जोरा सिकंदर से वादा लेती है कि सिकंदर फिर कभी उससे मिलने नहीं आएगा। रामनाथ जी सिकंदर को बताते हैं कि कामना किसी होटल में अपना जन्मदिन मना रही है। ये जानकर सिकंदर तुरंत उस गुड़िया को लेकर होटल में पहुंचता है। होटल में डांसर ये गाना गा रहे होते हैं।
ये उम्र प्यार की है।
सिकंदर जैसे ही कामना को विशाल के साथ देखता है, उसकी वो गुड़िया हाथ से छूट जाती है और चूर चूर हो जाती है।
विशाल और कामना को एक साथ देखकर सिकंदर का दिल टूट जाता है और वो जोहरा को अपना हाले दिल सुनाने के लिए उसके पास पहुंचता है, पर जोहरा दरवाजा नहीं खोलती। जब सिकंदर को कुछ नहीं सूझता तो वो दरवाजा तोड़ने लगता है और जोहरा हीरा चाटकर अपनी जान दे देती है, पर जेडी ये सब कुछ देख लेता है।
सिकंदर जोहरा की लाश कब्रिस्तान के उसी बाबा के पास लेकर जाता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब है कि बाबा भी मर चुके हैं। जेडी ये सारी बातें दिलावर को सुनाता है और ये भी बताता है कि अगले दिन सिकंदर की बहन की शादी है। सिकंदर विशाल से कहता है कि वो भी कामना से शादी कर ले।
शादी वाले दिन सिकंदर कामना से वो खत वापस मांगने जाता है जो विशाल ने सिकंदर के लिए लिखी थी, और वो कामना से विनती करता है कि ये बात विशाल को कभी ना बताए।
चिट्ठी? लेकिन वो चिट्ठी तो विशाल ने लिखी थी, उसे तुम क्यों लेने आए हो?
वो चिट्ठी विशाल ने लिखी जरूर थी, लेकिन अपने लिए नहीं है, बल्कि
बल्कि
बल्कि बल्कि मेरे लिए लिखी थी मैम साहब।
तुम्हारे लिए?
हाँ मैम साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, लिखना नहीं आता, इसलिए वो चिट्ठी विशाल ने लिखी थी, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो चिट्ठी मैंने किसके लिए लिखवाई थी। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ मैम साहब। मैं तो बचपन से ही आपसे, वो चिट्ठी आप मुझे दे दीजिए और विशाल से इसका जिक्र मत कीजिएगा, वो मेरा दोस्त है, अपनी जान से ज्यादा मुझे चाहता है, अगर उसे पता चल गया तो न जाने क्या कर डालेगा।
जैसे ही सिकंदर कामना के कमरे से बाहर जाता है, दिलावर कामना को उठाकर ले जाता है और जेडी के गुंडे मेहरू को। सिकंदर कामना को बचा लेता है, विशाल मेहरू को, पर दिलावर के साथ लड़ाई में दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं।
मरते वक्त दिलावर को पता चलता है कि सिकंदर को किसी और से मोहब्बत थी और उसे अपने किए पर काफी पछतावा होता है।
जख्मी हालत में सिकंदर विशाल और मेहरू की शादी में पहुंचता है और उसके मुंह से कामना के लिए मेम साहब निकल जाता है। तभी सबको पता लगता है कि सिकंदर कामना को कितना चाहता था।
आज से आप दोनों पति पत्नी हो चुके हैं।
कामना ही तेरी मेम साहब है जिससे तू?
नहीं, मुझे कुछ सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
करता।
सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल, सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
सिकंदर ये तुमने क्या किया? ठीक है तो क्या मेरे दोस्त, जिंदगी भर ये तुझसे प्यार करती रही और मैं उसे अपना प्यार समझता रहा विशाल।
इस तरह से सिकंदर एक सच्चे आशिक का फर्ज निभाता है और एक अच्छे दोस्त का भी फर्ज निभाता है।
जिंदगी